ओम शांति।
गुड मॉर्निंग। हम पिछले 3-4 दिनों से राजयोग के अलग अलग विषयों के बारे में हम सुन रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के भिन्न भिन्न वक्ताओं से हम ये जाना कि हम कौन हैं, परम सत्य परमात्मा कौन है और उनसे कनेक्शन कैसे जोड़ना है। लेकिन आज हम कर्मों के बारे में जानेंगे, कर्म फिलॉसफी के यानी कर्म की गहन गति के बारे में जानेंगे। तो खास इसके लिए आज हमारे बीच दिल्ली हरिनगर से राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन जी पधारे हैं। हम उनका करतल ध्वनि से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप बाल्यकाल से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं और पिछले 15 वर्षों से समर्पित रूप से आप हरिनगर सेवा केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने प्राप्त की है और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी आपने अन्नमलाई यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। आप अन्नमलाई यूनिवर्सिटी के पीसीपी प्रोग्राम्स, एमएससी के पीसीपी प्रोग्राम्स में आप फैकल्टी मेंबर हैं और साथ ही पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के भी आप फैकल्टी मेंबर हैं। साथ ही साथ राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के सिक्योरिटी सर्विस विंग, जो अलग अलग विंग्स है उसमें से एक सिक्योरिटी सर्विस विंग के भी आप फैकल्टी मेंबर हैं। आपने कई सारी ट्रेनिंग्स और लेक्चर्स भी कंडक्ट किए हैं, जैसे कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जरोधा, IITM, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रिलायंस कंपनी इत्यादि। आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशंस भी कराए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस छावला न्यू दिल्ली में। तो आइए आज कर्मों की गहन गति के बारे में हम अधिक सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन जी से। ओम शांति।
ओम शांति। सब प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। आप सब पिछले 3 दिनों से यहां पर उस राजयोग का अनुभव भी कर रहे हैं और जान भी रहे हैं कि मैं कौन हूं, वो परमात्मा कौन है और उससे जुड़ना कैसे है। पहले दिन आप सब ने किया कि मैं कौन हूं, स्वयं का बोध, क्योंकि आज हम स्वयं से ही अपरिचित हो गए हैं। तो फर्स्ट डे आपने सीखा कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं और मेरा दोनों अलग है और शायद हमें पहले इसका बोध नहीं था। और दूसरे दिन आपने किया कि वो परमात्मा कौन है, क्योंकि परमात्मा को लेकर हमारे मन में बहुत सारी बातें थी, लेकिन आज हमें समझ में आया कि कोई भी देहधारी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता है। तभी शास्त्रों में उसको वाहेगुरु, अल्लाह, शिव कई नामों से पुकारा। तो परमात्मा तो वास्तव में कौन है, एक ज्योति है। जैसे मैं आत्मा ज्योति हूं, वैसे मेरा पिता भी क्या है, ज्योति है। और कल आपने किया इस ज्योति को उस महाज्योति से कैसे जुड़ना है, क्योंकि जब तक खुद को नहीं जानोगे तब तक खुदा को नहीं जान सकते, और जब तक खुदा को नहीं जान सकते तब तक उससे जुड़ नहीं सकते। तो आपने पिछले 3 दिन से खुद को जाना, खुदा को जाना और उससे कैसे जुड़ना है उसको जाना। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हमारे मन में कई बार बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, ये कर्मों का सिद्धांत क्या है, क्योंकि कर्म तो हम करते हैं, लेकिन जब इस कर्मों के फल की घड़ी आती है तो हम क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्योंकि कई बार फल अच्छा होता है और कई बार कर्मों का फल अच्छा नहीं होता है। तो ये कर्मों का सिद्धांत क्या है, क्या कर्मों का फल हमें मिलता है? अगर मिलता है तो इसको डिसाइड कौन करता है कि इस कर्म का फल मुझे ये प्राप्त होने वाला है? तो ये सब आपके मन में चलता है, किस किस के मन में चलता है? चलता है। तो आप देखिए, जब कोई कर्म का फल अच्छा मिलता है, धन मिलता, खुशी मिलती, कुछ भी प्राप्त होता, तब हम कहते हैं मैंने किया था। देखो मैंने किया ना, तो इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन जब कुछ बुरा होता है तब हम सबसे पहले उंगली दूसरे पर उठाते हैं, देखो इसके कहने पर मैंने ऐसे किया था, मेरा विचार नहीं था करने का, परंतु इसके कहने पर किया। जब उससे भी संतुष्टता नहीं हुई तब हमने हाथ ऊपर की ओर कर दिया कि सब कुछ करने वाला तो वही है। तो अगर बुरा करने वाला वो है तो अच्छा करने वाला भी वही होना चाहिए ना। लेकिन यहां पर हम अपने अनुसार विधि को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो वास्तव में कर्म कौन करता है और कर्म का फल कौन पाता है और कौन से कर्म का फल क्या मिलता है, आज हमें ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज कोई भी मनुष्य कर्म के बिना रह सकता है? नहीं रह सकता। भले दुनिया में भले कहते हैं कर्म संन्यास, हठ योग संन्यास, राजयोग संन्यास, बहुत सारे संन्यास है, लेकिन जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक कर्म करना ही पड़ेगा। अगर मैं भोजन कर रही हूं, पानी पी रही हूं, वो भी तो क्या है, कर्म है ना, तो उससे तो हम बच ही नहीं सकते हैं। परंतु जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें ही प्राप्त होता है। लेकिन कई बार हमारे मन में चलता है मैं तो अच्छा करता हूं, मैं तो सबको सुख देता हूं, परंतु फिर भी मुझे क्या मिलता है, दुखी मिलता है, अशांति मिलती है, ये ऐसे कैसे हो गया? लेकिन ये क्यों हुआ, क्योंकि मुझे कर्मों के बारे में समझ नहीं है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि ये कर्म क्या है और कर्म को कैसे करना है और जो पीछे कर्म किए थे उसको कैसे भोगना है। तो कर्म तो हम सब करते हैं, लेकिन कर्म करते कैसे हैं उसकी अवेयरनेस नहीं है। तभी शास्त्रों में कहा करने से पहले क्या करो, सोचो, बोलने से पहले तोलो। क्यों कहा? हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने कहा कर्म करने से पहले सोचो, बोलने से पहले तोलो कि आप क्या बोलने वाले हो। क्यों कहा? ये जो एक सेकंड का पॉज है वो हमें बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। परंतु हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। कौन कर्म करने से पहले सोचेगा, कौन बोलने से पहले तोलेगा? परंतु आप देखेंगे जब भी आप कोई ऐसा कर्म करने जाते हैं तो हमारी जो इनर कॉन्शियसनेस है, अगर आपने चेक किया होगा, वो इनर कॉन्शियसनेस हमें क्या करती है, रोकती है। मान लो झगड़ा हो रहा है, झगड़ा करते हुए हाथ उठाना है तो अंदर की कॉन्शियसनेस क्या कहती है, रुको, नहीं उठाना हाथ। लेकिन हम उस इनर कॉन्शियसनेस को भी क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और हाथ उठा देते हैं। तो वो इनर कॉन्शियसनेस क्या है? क्योंकि आपने पहले दिन जाना कि आत्मा के साथ गुण होते हैं, उसकी क्वालिटीज हैं ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति। तो आत्मा की ओरिजिनलिटी, ये सात क्वालिटीज हैं। तो आत्मा को इंटरनली पता है मुझे सबको सुख देना है, मुझे सबको शांति देनी है, मुझे सबको प्रेम देना है। परंतु जब वो व्यक्ति गुस्सा करने लगता है तो उसकी ये सात क्वालिटीज जो इनर कॉन्शियसनेस में है वो जागृत होती हैं कि ये तुम्हारा कर्म नहीं है। परंतु हम ईगो के कारण, बॉडी कॉन्शियस के कारण क्या कर देते, गुस्सा कर देते हैं। और जब उसका रिटर्न बैक आता है किसी ना किसी जन्म में, तो हमें लगता है मैंने तो कुछ पाप ही नहीं किया था। मान के चलिए आपने किसी को 1,00,000 रुपया दिया, उसको आप जानते हैं, और जब उससे लेने का समय आया तो आपके सामने 10 लोग खड़े हैं, उसी के रिश्तेदार खड़े हैं, उसके फ्रेंड्स भी खड़े हैं, आपके फ्रेंड्स भी खड़े हैं, लेकिन आपकी नजर किस पर जाएगी, किस पर जाएगी? जो 10 खड़े हैं उस पर जाएगी या जिसको दिया है उस पर जाएगी? जिसको दिया है उस पर जाएगी ना। तो उसी पर नजर क्यों गई? क्योंकि उसके साथ आपने लेन देन किया। तो कई बार मन में आता है यही व्यक्ति मुझे क्यों मिला, यही परिवार क्यों मिला, यही बच्चे मिलने थे क्या, यही पति मिलना था, यही सास ससुर मिलने थे, वो ऐसे ही नहीं मिले हैं। क्योंकि 10 लोग खड़े थे लेकिन नजर किस पर थी? जिसको मैंने दिया था। तो ये सारा कर्मों का सिद्धांत है। तभी कहा जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके करने से पहले, कर्म करने से पहले मुझे उसकी समझ होनी चाहिए। तभी कहते हैं कि एक बार एक महात्मा जी और उनका शिष्य दोनों जंगल में तपस्या करते थे। तो एक बार उनके महात्मा जी ने कहा अभी मैं 2 दिन के लिए बाहर एक घोर तपस्या में जा रहा हूं, लेकिन पीछे का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वे तुम्हें देखना है, परंतु 2 दिन के बाद जब मैं जाऊंगा तो कल के दिन मेरा मौन रहेगा, तो तुम्हें जो भी कुछ पूछना है वो मेरे से पहले ही पूछ लेना। तो वो अगले दिन जब उनसे पूछता है तो उनका मौन होता है। तो वो उनसे पूछता है मुझे किन बातों का ध्यान रखना है, आप तो नहीं रहेंगे तो मुझे किन बातों का पीछे से ध्यान रखना है। तो उनका तो मौन था, तो उन्होंने कॉपी पेन लिया और उसमें पहला शब्द लिखा अवेयरनेस। तो उस शिष्य को कुछ समझ में नहीं आया कि अवेयरनेस इसका मतलब मुझे जागृत रहना है, कि कोई भी समय कैसा भी हो मुझे जागृत रहना है। कुछ समय के बाद उसको फिर हलचल हुई, ये अवेयरनेस का मतलब क्या है? तो वो फिर शिष्य गुरु के पास जाता है और फिर पूछता है महात्मा जी मुझे किन बातों का ध्यान देना है, आगे पीछे किन बातों का ध्यान देना है। तो वो आगे भी एक शब्द लिखते हैं अवेयरनेस और पीछे भी एक शब्द लिखते हैं अवेयरनेस। फिर उसको हलचल होती है ये अवेयरनेस क्या है और इस अवेयरनेस का रिजल्ट क्या निकलेगा। तो उसके महात्मा जी फिर लिख देते हैं इज इक्वल टू अवेयरनेस और वो चले जाते हैं। लेकिन उस अवेयरनेस का अर्थ था कि तुम दूसरों के साथ कैसे बात करते हो उसके प्रति जागृत, तुम स्वयं से कैसे बात करते हो उसके प्रति जागृत, तुम क्या सोचते हो उसके प्रति जागृत, और दूसरों को क्या देते हो उसके प्रति जागृत। तो अगर आज हम पूछें स्वयं से, क्या हम कोई भी कर्म, कोई भी बोल, कुछ भी देखना अवेयरनेस के साथ करते हैं, कॉन्शियसनेस के साथ करते हैं, या हो जाता है? क्या कहेंगे? हो जाता है। क्यों होता है? आगे पीछे नहीं सोचते हैं। और क्यों हो जाता है? गुस्सा कोई करना चाहता है इस सभा में, या आपने पिछले 3 दिन में आई थिंक गुस्सा नहीं किया होगा, इरिटेट नहीं हुए होंगे, या टेंशन में नहीं आए होंगे, ऐसा है ना? तो आपको अच्छा लग रहा है या कुछ कमी लग रही है? किस किस को अच्छा लग रहा है? सबको अच्छा लग रहा है ना? तो अगर अच्छा लग रहा है मींस उसके बिना काम हो सकता है, हो सकता है ना? तो कर्म करने से पहले हमने कहा हो जाता है, ये क्यों हो जाता है? आदत बन गई है ना? सबसे भाई जी ने कहा आदत बन जाती है। हम कोई कर्म को एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, 5वीं बार करना नहीं पड़ता है, और वो जो आज हम शब्द यूज कर रहे हैं हो जाता है। और कितनी बड़ी विडंबना है, गुस्सा आ जाता है और शांत रहना पड़ता है। होना क्या चाहिए था? शांति आनी चाहिए थी और गुस्सा करने के लिए सोचना चाहिए था, लेकिन यहां उल्टा हो गया है, क्योंकि हमने कर्मों को एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, उसके प्रति अवेयरनेस नहीं थी। तो जितना हम कर्मों के प्रति अवेयरनेस होंगे, आप देखिए कंपनी में भी कहते हैं कोई भी चीज को जब स्टार्ट और फिनिश किया जाता है तो उसके बीच में एक पॉज बटन होता है, ब्रेक टाइम होता है। क्यों होता है ये ब्रेक टाइम? टू चेक योरसेल्फ, टू चेक योर स्टेमिना, टू चेक योर पोटेंशियल। तो कर्मों के स्टार्टिंग और कर्मों के एंड में भी एक पॉज बटन है, लेकिन हम उस पॉज बटन को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तभी कहा सोचने से पहले, करने से पहले सोचो, दैट इज अ पॉज बटन, क्योंकि वो मुझे बताएगा कि तुम क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो। तो ये कर्म जो है, कर्मों के अनुसार ही हम अपने जीवन को जीते हैं। और ये नहीं है कि अगर मैंने अच्छे कर्म किए तो उसका फल बुरा मिलेगा, और अगर बुरे कर्म किए तो उसका फल बुरा मिलेगा, ऐसा होता है? ऐसा नहीं हो सकता है। कर्मों का सीधा, अगर आपने एक आम का बीज बोया है तो क्या मिलेगा? आम मिलेगा ना? ये हो सकता है आपको केला मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, कितना भी कोशिश कर लीजिए नहीं मिल सकता। तो कर्म भी एक बीज है, जैसा बीज आप बोएंगे उसके फल की प्राप्ति वैसे ही होगी, परंतु हम कहते हैं इसमें तो भगवान निश्चित करता है कि तुम्हें क्या फल मिलता है, परंतु नहीं, भगवान का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। आप कभी अपने बच्चों को दुख देना चाहेंगे? देना चाहेंगे? सोचने में ही डर लगता है, कैसे दुख दे दे उनको? बच्चे भल माँ बाप को दुख दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों को दुख नहीं देते, और वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। और मंदिर में जाकर ही मैंने गाया, दुख हरता सुख करता। और जब दुख आता है किसको याद करते हैं? भगवान को। अरे दुख देने वाले को क्यों याद कर रहे हो? दुख दिया ना उसने तो, लेकिन क्या कहते हैं, भगवान को याद करो। तो दुख देने वाले को तो कभी याद ही नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब वो दुख नहीं देता है। तो भगवान का मेरे कर्मों में इंटरफेरेंस नहीं होता है। जो भी मैं करती हूं या करता हूं वो मैं अपनी समझ के साथ ही करता हूं, और उसकी भोगना भी उसी के अनुसार मुझे प्राप्त होती है। तभी कहते हैं कि एक बार महाभारत का सीन सामने आता है कि एक बार श्री कृष्ण जी आराम कर रहे थे, तो कौरवों में से दुर्योधन और पांडवों में से अर्जुन दोनों युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण जी से मिलने जाते हैं और वो विश्राम करने कर रहे होते हैं, तो जो दुर्योधन है वो उनके सिर के पास खड़ा हो जाता है और जो अर्जुन है वो उनके पैरों के पास बैठ जाता है। और जब श्री कृष्ण जी की आंख खुलती है तो सबसे पहले नजर उनकी अर्जुन पर गई और उन्होंने पूछा, अर्जुन किस लिए आए हो, क्या चाहिए? तो उसके बाद दुर्योधन कहता है, पहले तो मैं आया हूं, लेकिन नजर किस पर पड़ी? अर्जुन पर पड़ी। और बातचीत करते हुए जब उन्होंने कहा कि युद्ध से पहले तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है मैं एज अ सारथी और दूसरा अक्षौणी सेना, परंतु जो भी मुझे चूज करेगा, मेरी ये कंडीशन है, मैं शस्त्रों को नहीं उठाऊंगा, सारथी जरूर होऊंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। हम सब ने सुना है ना। तो कौरवों ने चूज किया सेना और पांडवों ने चूज किया, तो श्री कृष्ण की भी क्या कंडीशन थी, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, सारथी जरूर बनूंगा। यही हमारे जीवन का सिद्धांत है, युद्ध हमें करना है, कर्म हमें करना है। भगवान सारथी बन सकता है लेकिन मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर भगवान भी युद्ध करेगा तो फिर तो 50-50 होना चाहिए ना, 50-50 होना चाहिए। लेकिन भगवान मुझे समझ दे सकता है, युद्ध में भी दिखाया, अर्जुन को समझ दी जा रही थी, चाहते तो श्री कृष्ण जी युद्ध करके जीत प्राप्त कर सकते थे, परंतु यहां सिद्धांत लागू हो गया, क्योंकि कहने में आता भगवान ने इसकी मदद की थी इसलिए वो युद्ध जीत गया, परंतु नहीं। तो इसी प्रकार जीवन में भी भगवान मुझे इंस्ट्रक्शन दे सकता है, भगवान मुझे समझ दे सकता है, परंतु मेरे कर्मों में मेरा साथ नहीं दे सकता है। तो इसीलिए जब कर्मों को भोगने की बात आती है तो हम भगवान पर डाल देते हैं, परंतु भगवान का तो कोई इसमें लेन देन ही नहीं है। तो जो भी हम कर्म भोगते हैं वो इसी मनुष्य जन्म में ही भोगते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे शास्त्र तो हमें क्या कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म एक ही बार मिलता है और बाकी जन्म हम क्या करते हैं, 84 लाख योनियों में जाकर के अपने कर्मों को चुकतू करते हैं, और उस 84 लाख योनियों के बाद ये एक मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसा सुना ना, हमने सुना होगा। तो आप में से कौन कौन है जो ये मानते हैं कि जो मनुष्य जन्म है वो एक ही बार मिलता है, हाथ खड़े करेंगे? और जो समझते हैं हम मनुष्य जन्म में ही कर्मों को चुकतू करते हैं वो कौन है? अच्छा, अभी इसमें तीसरी कैटेगरी भी है, जो समझते हैं हमें पता ही नहीं है, बहन जी हम मनुष्य जन्म में जाते हैं या कुत्ते बिल्ली की जोनी में जाते हैं, वो कौन है? अच्छा वो भी है, अच्छा जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो कौन सी कैटेगरी है फिर? अच्छा जो समझते हमें पता समझ ही नहीं है बहन जी, आप बताएंगे तो समझेंगे, वो कौन है? अच्छा ओके, अच्छा जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया फिर वो कौन सी कैटेगरी है? वो सो रहे हैं। आप देखिए, आप यहां पर आए हैं, ये भी आपके कर्मों का फल है, भाग्य है। इनविटेशन तो बहुतों को दिया होगा ना, और ये भी हो सकता है टिकट किसी का और था, आया कोई और है, हो सकता है ना। है आप में से कोई? देखिए है ये, किस इसको क्या कहेंगे, ये कर्मों का फल है। तो मनुष्य क्या मनुष्य की जोनी में ही आता है या उसकी जोनी का परिवर्तन होता है? और हम कहते हैं कि जितना बुरा कर्म करेगा उतना बुरी जोनी में वो जाएगा, ऐसा ही सुना है शायद हमने। 84 लाख योनियां होती हैं, अलग अलग जन्म होते 84 लाख, पशु पक्षी है सब है, लेकिन क्या मनुष्य उसमें जाता है ये हमें क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहली बात, अगर मनुष्य कुत्ते बिल्ली की जोनी में जाने के बाद ये मनुष्य जन्म पाता, पहली कंडीशन वो सुखी होना चाहिए था, क्योंकि उसने तो अपने सारे पाप कर्म कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी बन करके क्या कर लिए, भोग लिए ना। परंतु मनुष्य जन्म सुखी है शायद नहीं है। दूसरी बात, जब कोई बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही उसको अलग अलग बीमारियां होती हैं, आजकल तो पैदा भी नहीं होता, मां के गर्भ में भी होता है तो भी ऑपरेशन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तब हम कहते हैं ये इसके पिछले जन्मों के कर्म हैं। तो ये पिछले जन्मों के कर्म कहां से आ गए, जबकि मैंने तो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी बन करके क्या कर लिया था, इस जन्म को भोग लिया था, तो ये पिछले जन्मों के कर्म कहां से आ गए। तीसरा, आप देखेंगे किसी को अपने पिछले जन्मों में ले जाया जाता है, हिप्नोटाइज करके उसको पिछले जन्मों की स्मृतियां दिलाई जाती हैं, तो आज तक हमने किसी से भी नहीं सुना होगा कि वो पिछले जन्म में कुत्ता बिल्ली या और कोई पशु पक्षी था। और अगर हिंसक कर्म किया और हिंसक योनि में चला गया तो वहां रियलाइजेशन है या और हिंसा कर रहा है? मान लो मैंने बहुत गलत कर्म किए और ऐसे पशु योनि में चली गई जहां पर शेर की योनि में, जहां वो हिंसा ही हिंसा कर रहा है, तो वहां मुझे रियलाइजेशन होगा या मैं और हिंसा करूंगा? और हिंसा करूंगा ना, तो जब और हिंसा करूंगा तो मनुष्य जन्म में कैसे आऊंगा, मैं तो और ही पाप कर्म करता जा रहा हूं। तो मनुष्य जो है वो मनुष्य की जोनी में ही अपने कर्मों को क्लियर करता है, क्योंकि एक बीज है, बीज से क्या निर्माण होगा उसका डिसीजन उस बीज से होता है। तो इसी प्रकार मैं क्या कर्म कर रहा हूं उसका डिसीजन मेरा फल करता है। तो इसीलिए जो मनुष्य है वो मनुष्य की ही जोनी में अपने कर्मों को क्लियर करता है, और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अगर मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। परंतु फिर हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, अगर मनुष्य मनुष्य की जोनी में अपने कर्मों को क्लियर करेगा तो पशु पक्षियों का क्या होगा? सबसे पहले हमें चिंता किन की हो जाती है, क्या पशु पक्षी ही बनेंगे? उनको कभी मन नहीं होगा कि मैं भी क्या बनूं, मनुष्य बनो। अगर मैं आपसे पूछूं, आज हम सबसे ज्यादा विश्वास मनुष्यों पे करते हैं या जानवरों पे करते हैं? जी, जानवरों पर करते हैं। आज तो ये ट्रेंड हो गया है, घरों में क्या रहता है, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कभी कहा ह्यूमन बीइंग इज अ फेथफुल एनिमल? कभी नहीं कहा। आज मनुष्य की मनुष्य से नहीं बन रही है, इसलिए उन्होंने घरों में जानवरों को पालना शुरू कर दिया है। पहले कभी ऐसा ट्रेंड था? कभी नहीं था। तो अगर मनुष्य, आज मैं कहूंगी जानवर ज्यादा सुखी है, आज उनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, इस बार का हमारा टॉपिक भी क्या है, होलिस्टिक वेलबींग ना, हर तरह से हमें अपने आप को ठीक करना है। कभी जानवरों को स्ट्रेस होते हुए देखा कि वो एक साइकेट्रिस्ट के पास बैठे हैं, मुझे टेंशन हो रही है, और मनुष्य को एक पीढ़ी की चिंता नहीं है, कितनी पीढ़ियों की चिंता है। तब ये कहानी सुनाते हैं कि एक बार बहुत अमीर व्यक्ति था, तो वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया। उसने कहा, देख करके बताओ कि मेरी कितनी पीढ़ियां हैं जो मेरे पास धन है वो खा सकती है। तो उसने कहा, तुम्हारे पास इतना धन है जो तुम्हारी 6 पीढ़ियां इस धन को खा सकती हैं। तो उसको बड़ा खुशी भी हुई, लेकिन साथ साथ वो उदास भी हो गया। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने पूछा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें उदासी कैसी? कहता, मैं ये सोच रहा हूं मेरी 7वीं पीढ़ी का क्या होगा। व्यक्ति को चिंता, 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 चिंता। और जानवरों को कोई चिंता होती है? नहीं होती है। जानवरों को कभी सुना हार्ट अटैक हो गया? हुआ कभी जानवरों को? नहीं होता। जानवर सुबह निकलते हैं, पशु पक्षी सुबह निकलते हैं, शाम को घर आते हैं, लेकिन अगले दिन की उनको चिंता नहीं होती है। और आप देखिए, हम कितने भी बीमार हैं, हमें कितनी भी शरीर में पीड़ा हो, और भगवान धरती पर आए और कहे, मैं तुम्हारी पीड़ा खत्म कर देता हूं, तुम जाकर इस पशु पक्षी की जोनी में चले जाओ, तैयार होंगे? होंगे? यस और नो? नहीं। क्यों? हम तो पशु पक्षियों की जोनी को अच्छा मानते हैं, तभी तो ये मनुष्य जन्म मिला। परंतु कभी भी कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे क्या कर दो, पशु पक्षी बना दो। और आप देखिए, पशु पक्षियों को भी अपनी जोनी बहुत पसंद है। जैसे आप देखिए, चावल में कीड़े हो जाते हैं, और अगर उसको धूप में डालो तो वो कीड़े क्या करते हैं, अपनी जान बचाते हुए उसमें से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब उनको भी अपनी जान क्या है, अपनी जोनी बहुत प्रिय है। तो हर एक जोनी में हर एक आत्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है, परंतु जोनी का परिवर्तन नहीं होता है। आज मनुष्य को कितनी बीमारियां हैं, कितना स्ट्रेस है, कितनी एंजाइटी है, ये उसके ही कर्मों का फल है। जबकि आज तो जानवर ज्यादा सुखी है। आप देखिए, कोई जानवर का एक्सीडेंट होता है, जैसे आप माउंट पे आए हैं तो आपको बहुत सारे बंदर दिखे होंगे, और ये बंदरों की या किसी जानवर की विशेषता होती है कि एक भी व्यक्ति, एक भी जानवर को तकलीफ होगी तो सारे जानवर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और आज अगर किसी मनुष्य का एक्सीडेंट हो जाए, क्या करेंगे? सबसे पहला क्या करेंगे आज की डेट में? पहले वीडियो बनाएंगे, है ना, ऐसा ही ट्रेंड। और दूसरा संकल्प आएगा, अगर मैं इसको ले गया तो कहीं मैं ही ना फंस जाऊं, कि कहीं तुम्हारी गाड़ी से ही इसका एक्सीडेंट, ऐसा है ना। तो मनुष्य की सोच कहां चली गई है? तो क्या जानवर ऐसी जोनी में आना चाहेगा? शायद नहीं आना चाहेगा। मनुष्य पर हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो ये कैसी जोनी है। तो जो मनुष्य है वो अपनी जोनी में ही अपने कर्मों को चुकतू करता है। तभी जिसने जो कर्म किया उसकी भोगना वैसे ही होती है। तभी कहते हैं कर्मों का जो सिद्धांत है वो बड़ा सूक्ष्म है। जैसे आप देखिए बचपन में आप सब ने पेड़ में से कोई ना कोई फ्रूट तोड़कर खाया होगा ना। बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी को भी हम समझेंगे। सबसे पहला कर्म किसने किया इन कर्म इंद्रियों में से सबसे पहला कर्म किसने किया? हाँ जी, आंखों ने किया। मान के चलिए आपका फेवरेट फ्रूट आम है, आपने देखा पेड़ पर क्या है, आम लगा हुआ है, तो आंखों ने क्या किया, उस आम को देखा, इच्छा हुई इस आम को खाने की। लेकिन जो माली था, माली ने कहा इस आम को नहीं तोड़ना है। लेकिन दूसरा कर्म माली के कहने के बावजूद भी दूसरा कर्म मेरे हाथों ने किया, क्या किया, उसको तोड़ा किया। उसके बाद जब माली मेरे पीछे डंडा लेकर दौड़ा तो तीसरा कर्म मेरे पैरों ने किया। देखो कितना सूक्ष्म चीज है। और मैंने दौड़ना शुरू कर दिया और जब माली मेरे पीछे दौड़ा और उसने मुझे लाठी मारी तो रोई कौन आंखें। पहला कर्म किसने किया था? आंखों ने, तो रोया भी कौन? ये है कर्मों का सिद्धांत। समझ में आया? जो कर्म जैसा करता है उसका रिटर्न उसको वैसे ही मिलता है। तो मैं ये नहीं कह सकती हूं कि ये कर्म तो मैंने किया ही नहीं है। आंखों ने कर्म किया था तो भोगा भी आंखों ने ही है। शुरुआत आंखों ने की थी तो रोई भी हाथ नहीं रोए, दौड़े पैर भी थे, हाथों ने भी दौड़ा था, परंतु पहला कर्म आंखों ने किया तो उसकी भोगना भी आंखों ने ही की। भल खा भी लिया, स्वाद भी ले लिया, परंतु और किसी ने कुछ नहीं किया। तो इसी प्रकार हम कहते हैं मैंने तो ये कर्म किया ही नहीं है तो मुझे इसके फल की भोगना कैसे मिल सकती है। परंतु नहीं, किसी न किसी जन्म में मैंने इस कर्म को किया है तभी तो इसकी भोगना मुझे भोगनी पड़ रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कर्म मैंने किया है और भुगतान आप कर रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता है। कर्मों का सिद्धांत ही कहता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा किया तो अच्छा पाया, बुरा किया तो बुरा किया। प्रकृति का ही नियम है, जैसा बीज बोया वैसा ही फल मिलेगा। परंतु हां, फल मिलने में समय लग सकता है। आम का बीज बोएंगे तो 3-4 महीने में आम आएगा, अनाज का बीज बोएंगे तो 6 महीने में आएगा, एक नारियल का बीज बोएंगे तो 10 साल में मिलेगा। तो कर्मों के रिजल्ट में समय लग सकता है, परंतु कर्मों का फल ना मिले ये नहीं हो सकता है। और इस कर्मों के सिद्धांत में भगवान की कोई इंटरफेरेंस नहीं। तो इसलिए कहा कि करने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार चाहे जाने में चाहे अनजाने में मैंने इन कर्म इंद्रियों के द्वारा जो कर्म कर दिया उसका भुगतान तो मुझे करना ही पड़ेगा। चाहे अकेले ने किया, चाहे एक संगठन ने किया, तो उसका भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा। तभी आप देखिए कई बार कोई बस यात्रा पर जाती है और बस की बस खाई में गिर जाती है और सभी की मृत्यु हो जाती है। तब हम कहते हैं ऐसा क्या कर्मों का सिद्धांत था, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे लेकिन इकट्ठे गए और मृत्यु इकट्ठी हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये पहला कर्म अगर हम इंडिविजुअली करते हैं तो उसका भी कर्मों का फल मिलता है। जैसे मान के चलिए आपने किसी को दान कर दिया, पैसे का दान किया और उसने उस पैसे से चाकू खरीद लिया, आपने तो अच्छी इंटेंशन से गरीब को या किसी व्यक्ति को पैसे दिए लेकिन उसने उस पैसे से चाकू खरीद लिया और उस चाकू से किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या आपके कर्मों में उसका क्या कहेंगे परसेंटेज ऐड होगा या नहीं होगा? होगा, आप बताइए होगा या नहीं होगा? होगा ना। उसको मर्डर करने के निमित्त कौन बना? पैसा हमने। तब हमारे मन में आता है क्या दान नहीं करना चाहिए? दान करना चाहिए। किसी को कपड़े दे सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी को भोजन करा सकते हैं, परंतु आज सबको, कोई भी ऐसे व्यक्ति होते तो उनको सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और अगर उसने उस पैसे से ड्रिंक भी कर लिया, सिगरेट भी पी लिया, तो उसके निमित्त भी कौन बना? तो जाने अनजाने में हम कोई भी ऐसा कर्म करते हैं तो उसका भुगतान हमें करना ही पड़ता है। तभी कहा करने से पहले सोचो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, तभी हम बच सकते। और दूसरा, जब हम किसी संगठन में देखते हैं, कोई आजकल देखो ट्रेन है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है या बस जाती है, बस का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया था? यहां पर भी कर्मों का सिद्धांत है। जैसे आप देखिए कि कोई व्यक्ति किसी जानवर का शिकार करता है तो पहला कर्म उसने क्या किया? एक जानवर को मारा और उसका शिकार कर दिया। उसके बाद उसने उस शिकार को मार्केट में लाकर किसी व्यक्ति को बेच दिया, उसने दूसरा कर्म कर दिया। और बेचने वाले ने लोगों को बांट दिया, उसने अपना कर्म कर दिया। और बेचने वाले से लोगों ने खरीद लिया, उसने भी एक कर्म कर दिया। और खरीदने वाला घर में लाकर पकाया, उसने भी अपना कर्म कर दिया। और पकाने के बाद जिन्होंने खाया उसने भी क्या कर दिया? अपना कर्म कर दिया। तो ये जो सारे हैं वो इकट्ठे ही एक पाप के भागी बन गए। तो इसका जब भुगतान होगा कैसे होगा? कैसे होगा? तो संगठन में ही करना पड़ेगा। हम इस संगठन से फिर बच नहीं सकते। जैसे आपने 50 का एक ग्रुप बनाया और 50ों ने ही उसमें शेयरिंग किया तो प्राप्ति भी कैसे होगी? 50ों के बीच में होगी ना। तो अगर अच्छे की प्राप्ति 50ों के बीच में है तो गलत की प्राप्ति भी 50ों के बीच में होगी। तभी आप देखो कोई व्यक्ति उसको जानता नहीं है, 50 लोग बस में हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, परंतु पिछले जन्मों में उन आत्माओं ने एक दूसरे को जाना। और हो सकता है कि जब व्यक्ति जो बस चला रहा था और उसके आगे जानवर आया और उस जानवर को बचाने के कारण वो बस खाई में गिरी, ये भी हो सकता है वो बस चलाने वाला कसाई ही हो और इस जन्म में वो उसको बचा रहा था और पिछले जन्म में वो उसको काट रहा था। और उसको बचाने के चक्कर में, कहने में तो ये आएगा कि वो उसको क्या कर रहा था? बचा रहा था। और सारे मनुष्य किस में गिर गए, खाई में गिर गए, परंतु यहां पर भी कर्मों का सिद्धांत है। तभी हम कहते हैं इसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ही मैंने ऐसा क्यों बोला, इसने मुझे ही दुख क्यों दिया, खड़े तो 10 लोग थे लेकिन इसने मुझे ही आके सुनाना शुरू किया, तो क्यों हुआ? क्योंकि कर्म किसने किया था? हमने किया था, तो भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना है, कर्म करने के बाद, चाहे जाने में कोई किसी का मर्डर, चाहे जाने में करे चाहे अनजाने में करे, सजा मिलती है या नहीं मिलती है? कहो मुझे तो जोश था, मैं बड़े गुस्से में था, मेरे से चाकू चल गया, मुझे मर दो, माफी मिलती है? नहीं मिलती है ना। तो ऐसे ही कोई कर्म चाहे जाने में किया चाहे अनजाने में किया, लेकिन उसकी भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमारी जो योनि का परिवर्तन नहीं होता है, आज मनुष्य योनि इतनी बदतर हो गई है कि उस आत्मा की ज्योति, उसकी शक्ति जो है वो इतनी डिम हो गई है कि थोड़ा भी उस पर प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला वो कौन सा स्टेप उठाता है? सुसाइड। आज मन की शक्ति इतनी कमजोर हो गई है, जानवरों को कभी देखा सुसाइड करते हुए? नहीं देखा। तो आत्मा की शक्ति इतनी जन्म लेते 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 इतनी स्लो डाउन हो गई है कि उसको आज ये कंडीशन पे आ गया है जीवन। तो इसीलिए हमें कर्म करने से पहले सोचना है। बार बार इसीलिए अटेंशन खिंचवा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, परंतु पॉज दो, करना है या नहीं करना है? तब हम कह देते हैं सिचुएशन ही ऐसी थी, गुस्सा तो आएगा ही ना बहन जी, परंतु गुस्सा तो कर लिया, काम भी हो गया, परंतु साथ में कर्म भी कर दिया, और अगले जन्म में जब वो आत्मा सामने आएगी तब हम क्या कहेंगे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, इसने ऐसे कैसे मुझे बोल दिया? लेकिन जो भी इस चक्र में हो रहा है वो कर्मों के अनुसार ही हो रहा है। परंतु अब प्रश्न उठता है, अब क्या हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों को बदल सकते हैं? बदल सकते हैं, और आगे के लिए क्या कर सकते हैं? तो क्या हम पिछले जन्मों के कर्मों को बदल सकते हैं? हाँ जी, कम कर सकते हैं, और कुछ बदल सकते हैं, उसका इंपैक्ट कम कर सकते हैं। आप देखिए दुनिया में जैसे कहते हैं कि प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, अगर आपने किसी से कुछ लिया और दे दिया तो वो इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, परंतु कर्मों के सिद्धांत में ऐसे नहीं होता है। अगर आपने 10 अच्छे कर्म किए और 5 बुरे कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि 10-5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने 10 अच्छे कर्म किए हैं तो 10 अच्छों का भी फल मिलेगा, और अगर 5 बुरे कर्म किए हैं तो उसका भी भुगतान करना ही पड़ेगा। यहां पर 10-5 इज इक्वल टू 5 नहीं हो सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? पहली बात, अपने कर्मों को कोसना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। हम कोई भी परिस्थिति आती है सबसे पहले रोना धोना शुरू करते हैं, मैंने तो किया नहीं, बताओ, पता नहीं भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहा है। ये क्लियर हो गया कि मैंने अगर किसी को पैसा दिया है तो मैं उसी से ही लूंगा, तो अगर मेरे को किसी कर्म की भोगना भोगनी पड़ रही है तो वो मेरे ही कर्मों का फल है, तो पहले उसको एक्सेप्ट कीजिए, यस मैंने किया है। आप देखिए जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी मन की वृत्तियां बदल जाएंगी, आपका मन शांत हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये क्लियर है, जैसा बीज बोया था वैसा ही फल मिला है। तो अगर जो भी पिछले जन्मों के कर्म है मैं उसको बदल नहीं सकती हूं, परंतु उसको एक्सेप्ट करके अपने मन की शक्ति को बढ़ाते हुए उसका सामना जरूर कर सकती हूं। मान के चलिए किसी को कैंसर है, उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो जीवन भर मुझे कैंसर हो गया, पता नहीं मुझे क्या बीमारी थी, किसने किया, क्यों, कौन से कर्मों का फल है, ऐसा ऐसा। दूसरा है उसको स्वीकार करके अपने अंदर की को बढ़ाकर उसका सामना करें। हम सबके जीवन में ये दो ही ऑप्शंस होती हैं, परंतु हम स्वीकार नहीं करना चाहते, अपनी गलती को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, तो हम क्या करते हैं, फिर कोसते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुझे अपने पिछले जन्मों के कर्मों को सुधारना है तो उसको पहला एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। और इसका फायदा क्या होगा? अपने आप को तो फायदा होगा ही होगा, परंतु रिश्तों में फायदा दिखने लग जाएगा, क्योंकि तो सबसे बड़ा हिसाब किताब हमारा कहां है, फैमिली में है। और वो फैमिली भी क्यों मिली है? कर्मों का फल है। तो सबसे ज्यादा हिसाब किताब हमारा उस परिवार में होता है। तो जब मैंने स्वीकार करना शुरू कर दिया तो मेरे रिश्ते ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। दूसरा, अपने मन की शक्ति को बढ़ाना। जब आप ऊंची जगह पर जाते हैं, प्लेन में भी जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जो नीचे बड़ी बड़ी चीजें हैं वो भी क्या लगने लग जाती हैं, छोटी लगने लग जाती है। है बड़ी चीजें लेकिन दिखती छोटी है। तो ऐसे ही जब हम अपनी मन की शक्ति को बढ़ाते जाएंगे तो जो नीचे परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल छोटी लगने लग जाती हैं। तभी भगवान हमें कहता है परिस्थितियां पेपर टाइगर बन जाएंगी। टाइगर देखेंगे तो डर जाएंगे, लेकिन अगर पेपर का टाइगर होगा तो उसके साथ खेलेंगे। दूसरा है, कर्मों के फल को चुकतु करने के लिए अपने मन की शक्ति को बढ़ाइए, और उसका साधन है राजयोग। अच्छी बुक्स पढ़ना, स्वयं के साथ समय बिताना, जिससे हमारे मन की शक्ति बढ़ने लग जाती है। और तीसरा, कर्मों के फल को तो चुकतु करना ही है, परंतु उसको चुकतु करते हुए तीसरा है स्वयं के अंदर डर को खत्म करना और बातों को पकड़ के ना रखना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो सबसे पहले क्या बैठ जाता है, अंदर डर बैठ जाता है। और जब दूसरा कुछ ऐसा होने लगता है तो हमें क्या होता है, वो सिचुएशन याद है, पहले भी ऐसे हुआ था, पता नहीं इस बार भी ऐसे ना हो जाए, तो एक डर पैदा हो जाता है। क्योंकि जो पीछे बातें हुई उससे मुझे सीखना है, उसको लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। तभी एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार दो गुरु यात्रा पर जा रहे थे, तो यात्रा करते करते उनको रास्ते में एक महिला मिलती है जो पानी में डूब रही थी। जब वो नदी पार करते हैं और देखते हैं एक महिला पानी में डूब रही है, तो एक गुरु क्या करता है, उस महिला को उठाता है और अपने कंधे पर बिठा करके उसको नदी पार कर देता है, और नदी पार कराकर उस महिला को वहीं छोड़ देता है। लेकिन जो दूसरा गुरु था
जब तक वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचते, वो गुरु सोचता रहता है। गुरु धर्म का नियम है किसी भी महिला को हाथ नहीं लगाना है, और इसने तो उस महिला को उठा करके क्या किया, नदी पार करा दिया। तो जब तक वो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचते, वो जो दूसरा गुरु था जिसने नहीं उठाया था, वो सारे रास्ते उसके बारे में सोचता 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 जाता है। और जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, तो जिसने सोचा था वो उस दूसरे गुरु को कहता है, आज तुमने बहुत बड़ा पाप कर्म कर दिया है। तो उसको तो भूल जाता है, तो कहता मैंने क्या पाप कर्म किया। तो उसने कहा कि तुमने उस महिला को उठाकर, जबकि हमारा तो नियम है कि महिला को हाथ नहीं लगाना, आपने तो उस महिला को उठाकर क्या कर दिया, पार करा दिया। तो वो गुरु कहता है मैंने तो उसको कुछ क्षण के लिए ही पकड़कर पार करा दिया, लेकिन तुम तो अभी भी उसको पकड़कर लेकर के आ रहे हो, तो हम दोनों में से महापापी कौन है। सोचने की बात है, हम कोई सिचुएशन होती है हम उसको ऐसे पकड़ कर रखते हैं और कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो भी करते पाप करते जा रहे हैं। तो किसी भी सिचुएशन से हमें सीख करके आगे बढ़ना है, ना कि उसको पकड़ कर क्या करना है, उससे डरते रहना है, उससे अपसेट होते रहना है। तो पिछले कर्मों को तो मैं इन विधियों से बदल सकती हूं, परंतु अब जो आगे वाले हैं, जो आज से इस घड़ी से मुझे करने हैं, उसके लिए पहली चाहिए अवेयरनेस, मैं क्या करने जा रहा हूं। जब आपके मन में उसके प्रति अवेयरनेस आ जाएगी तो गलत कर्म होगा। कहते हैं ना, दुर्घटना कब होती है, नजर हटी, अटेंशन हटा, अवेयरनेस हटी, तो दुर्घटना होगी ना। अटेंशन से गाड़ी चला रहे हैं तो दुर्घटना होगी नहीं, हो सकती ना। तो ऐसे कर्मों का एक्सीडेंट कब होगा, जब अवेयरनेस हट जाती है। ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही कर लिया, ऐसे ही कुछ नहीं होता है, ऐसे किया तो ऐसा ही उसका फल मिलेगा। तो पहला है अवेयरनेस, और दूसरा क्या करना होगा, अगर कर्मों को अच्छा करना है तो क्या करना होगा, पहले भी बताया। दूसरा है यूज पॉज बटन, कुछ भी करने से पहले पॉज, मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे क्या करना है। जब तक पॉज नहीं देंगे तो फिर कुछ भी होता जाएगा। अगर ब्रेक नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, नहीं, पॉज। तो इन कर्म इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म हो रहा है उसका भुगतान हमें करना ही पड़ेगा, और हर भुगतान में कल्याण ही समाया है। गीता में भी लिखा है जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो आगे होगा वो और भी अच्छा होगा, और जो चल रहा है वो भी अच्छा है। लेकिन हम अपने आप से पूछें, क्या हम इस सिद्धांत को मानते हैं, जानते हैं, मानते भी हैं, परंतु क्या इसको जीवन में अप्लाई करते हैं। हम ही शास्त्र पढ़ते हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो बीत गया वो भी अच्छा, और जो अभी हो रहा है वो तो और भी अच्छा हो रहा है। लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है और कोई कह दे बहन जी इसमें भी बहुत बड़ा कल्याण है, तो क्या होगा। हमने ही बचपन में अकबर और बीरबल की कहानी सुनी है ना, क्या सुना उसमें, अकबर बीरबल जब शिकार पर जाते हैं और अकबर की उंगली जब कट जाती है तो बीरबल क्या कहता है, बहुत अच्छा हुआ महाराज आपकी उंगली कट गई। तो उसको क्या आया, बड़ा गुस्सा आया, बताओ कैसे बोलता है, और उसको जा करके जेल में बंद कर देता है। और कुछ टाइम के बाद अकेला शिकार पे निकलता है तो उसको आदिवासी लोग उसकी बलि चढ़ाने के लिए पकड़ लेते हैं और उसकी बलि रुक जाती है। तो कल्याण था या नहीं था? कल्याण था। तो ऐसे ही अगर हम कोई भी परिस्थिति के बारे में सोचें जो हमारे पास्ट में हुई, उसमें जरूर कोई ना कोई कल्याण था जो उस समय समझ में नहीं आता है हमें, लेकिन कुछ सालों के बाद अगर हम देखें तो उसमें कल्याण अवश्य समाया होता है। मैं अपने जीवन का ही अगर आपको अनुभव सुनाऊं, किसी समय पर मेरा जीवन का एक ऐसा मोड़ था जब मुझे डिप्रेशन हुआ था। अभी आपको देखकर लगता है कि मुझे डिप्रेशन होगा किसी समय पर, और जब मुझे हुआ तो वो समय ऐसा होता है तब ना तो आपको कोई कल्याण दिखता है ना किसी का बोलना, तब तो ज्ञान भी अच्छा नहीं लगता किसी का बोलना। लेकिन आज अगर मैं उस समय को देखती हूं, अगर वो डिप्रेशन मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं यहां नहीं बैठी होती। अगर आप अपने पास्ट को देखें, कोई भी सिचुएशन अगर आई है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आई है। बच्चा जब तक एग्जाम नहीं देगा तब तक अगली क्लास में जाएगा, और एग्जाम भी कौन देता है? टेंथ क्लास का, एट क्लास का बच्चा कभी नहीं देगा। टेंथ क्लास का एग्जाम टेंथ क्लास का ही बच्चा देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो कैपेबल है, उसके अंदर एबिलिटी है उस एग्जाम को पार करने की। तो इसी प्रकार हम कहते हैं ये परीक्षा मेरे पास ही क्यों आई? भगवान को क्या मैं ही दिखता हूं इस परीक्षा को पार करने के लिए? तो भगवान को भी पता है, ही इज कैपेबल फॉर दैट, इसलिए वो परीक्षा मेरे पास आई है। परंतु हम क्या करते हैं, अंधेरे में खो जाते हैं और रोशनी को भूल जाते हैं। तो भगवान मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन बात आती है उसके साथ को लेने की, उसकी समझ को लेने की। भगवान को ये नहीं है सामने आके खड़ा हो जाएगा कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। वो किसी ना किसी के रूप में हमारी क्या कर देता है, मदद कर देता है। तो इसीलिए जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसमें कोई ना कोई कल्याण ही छिपा है। तभी हमारे शास्त्रों में कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो बीत गया वो भी अच्छा, जो आगे होगा वो और भी अच्छा होगा, तो फिर हमें चिंता किस बात की है? तो इसीलिए अगर मुझे अपने कर्मों को चेंज करना है तो मुझे पॉज देना बहुत जरूरी है। और तीसरा, अगर मुझे कर्मों को अच्छा करना है तो देने की भावना। आज हमारा देवताओं के पास जाते हैं तो उनके हाथ कैसे हैं? ऐसे है ना, देने वाले। और हमारे हाथ कैसे हैं? लेने वाले हैं। आज हम मंदिर में जाकर गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गने, जो कुछ मेरा है वो तेरा है, कहते हैं। और आज की फिलॉसफी क्या है? जो कुछ तेरा है वो भी मेरा है। मेरा तो मेरा है ही, लेकिन जो तेरा है वो भी क्या है? मेरा है। ऐसा हो गया ना व्यक्ति की हालत। तो देने की भावना, क्योंकि जितना हम देंगे उतना ही लेंगे। आप देखिए, आप अगर आप किसी को खुशी देते हैं तो आपकी खुशी कम होती है या बढ़ती है? बढ़ती है ना। पैसा कम हो सकता है, प्रॉपर्टी कम हो सकती है, लेकिन खुशी, शांति, पवित्रता, ये ऐसे खजाने हैं जितना आप दूसरों को देंगे उतना क्या होगा, वो बढ़ते जाएंगे। और चौथा और लास्ट, राजयोग, जो आप चार दिन से उसका आनंद ले रहे हैं। ये राजयोग एक ऐसा माध्यम है जो मुझे पॉज करना भी सिखाता है, अवेयरनेस भी लाता है और मेरे मन की शक्ति को भी बढ़ाता है। क्योंकि अगर आज हम अपने आप से पूछें क्या मेरा मन मुझे चला रहा है या मैं अपने मन को चला रहा हूं, क्या कहेंगे? मेरा मन मुझे चला रहा है या मैं मन को चला रहा हूं? मेरा मन मुझे चला रहा है। आपके मन ने कहा मीठा नहीं खाना, डायबिटीज है, हाँ, तो मन क्या कहता है? चल थोड़ा सा तो खा ले, थोड़े से तो क्या हो जाएगा। आपको देखो यहाँ कितना अच्छा ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, हाँ? मन कह रहा है नहीं खाना, तुम्हें डायबिटीज है। अरे ये तो प्रसाद है, थोड़ा सा तो खा सकते हैं, हाँ? तो मैं मन को नहीं चला रहा हूं, राजा प्रजा को नहीं चला रहा है, प्रजा राजा को चला रही है। तो जो प्रजा राजा को चलाएगी तो उसका राज्य कैसा होगा? तो ये राजयोग एक ऐसी विधि है जहां हम अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आइए अभी हम कुछ समय के लिए, 3 दिन से तो अभ्यास कर ही रहे हैं, 1 मिनट राजयोग का अभ्यास करके फिर अगर किसी के मन में प्रश्न है तो बाद में पूछेंगे, क्योंकि अभी समय हो रहा है। तो अभी हम कुछ समय के लिए इस राजयोग को करने की विधि है 3 स्टेप, थॉट, विजुलाइजेशन और एक्सपीरियंस। सरल शब्दों में आपको अपने अंदर एक संकल्प, जो भी आपको बोला जाएगा उन संकल्पों को लाना, उन संकल्पों को विजुलाइज करना और ठीक। अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय सुदेश दीदी जी आ गए हैं, तो मैं दीदी से अनुरोध करूंगी, आप देखिए आपका कितना बड़ा भाग्य है कि आपको सुदेश दीदी से मिलने का मौका मिल रहा है। तो मैं दीदी से अनुरोध करूंगी कि दीदी आए और आप सबसे मिले।
ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग, डिवाइन मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। आना और जाना, परंतु जा रहे हैं क्यों? जा रहे हैं क्यों? जा रहे हो किस लिए जा रहे हो? अच्छा लग रहा है ना तो रह जाओ ना। क्यों आए हैं बाबा के घर में? परंतु जा रहे हैं, जो ज्योत जगी है, जो वातावरण मिला है, जो आनंद और सुख का अनुभव हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, दिनचर्या कैसे बनानी चाहिए वो एक सैंपल मिला है, भोजन परमात्मा की याद में कैसे बनाना खाना खिलाना है एक प्रकार का सैंपल मिला है। तो आप मधुबन को साथ ले जाओ, अकेले नहीं जाना, मधुबन को साथ लेके जाओ, ज्ञान सरोवर को साथ लेके जाओ। जो भी आपने ये नियम मर्यादाएं शिक्षाएं सुनी है उसके अभ्यास के लिए जा रहे हैं, ये नहीं गृहस्थी में परिवार में जाके फंस गए, गृहस्थी बन के नहीं जाना, ट्रस्टी बन के जा रहे हो। जो भी मिला हुआ है उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करते करते वो नेचुरल आप जाए आपको महसूस होगा कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मन शुद्ध रहेगा, बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहेगा और कर्म करते भी बाबा की याद रहेगी, अपने पर अटेंशन और चेकिंग रहेगी। अभी घर तो आपका यही है, आप ऑफिस में जा रहे हैं, जो समझा घर ये है, ऑफिस है आपका जाना, बार तो जो ड्यूटी मिली है ना, जो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए कराने के लिए, रोज के नियम तो मैं समझती हूँ बहन ने सुनाए ही होंगे। तो अभी तो सुमन दीदी ने कहा दीदी अब ये जाने वाले हैं, हमने कहा ठीक है गुड मॉर्निंग करके आएंगे, अच्छा है मिल करके आएंगे। तो नीचे तो क्लास चलता ही है रेगुलर वालों का, उनका क्लास पूरा हुआ तो तभी अभी अभी आपसे आए। तो अभी क्या है मेन बात यह है दिनचर्या को रेगुलर रखो, और क्या थोड़ा समय के अभ्यास से फिर वो नेचुरल हो जाता है। पहले थोड़ा मुश्किल लगता है, अभी यहाँ अपने संगठन के बल से सहज आपके कमरे में तीनों और हैं दो और हैं वो आ रहे हैं, तो आप एक दो को सहयोग दे करके संग में ला आ गए। वहाँ पर फिर आप एक काम करना, रात में अगर सवेरे उठ सवेरे अमृत वेला जरूर करना है, तो रात में क्या करना, कार में नहीं सोना, कार में सोते हो ना, कहाँ सोते हो, बेड में सोते हो, तो शरीर क्या है आपकी, कौन सा सबक मिला है, ये शरीर कार है ना, मोटर कार है, ऑटो है, सारा दिन इसको चलाया और रात को भी इसी में सो गए तो नींद अच्छी नहीं आती है। तो ये जो ऑटो कार है आपकी जिससे कारोबार किया है दिन भर, उसको गैराज में रख दो। आपका बेड आपका गैराज है, उसमें पार्क कर दो। मैं आत्मा हूं तो योग में सोने से पहले थोड़ी देर योग में बैठो, या जो पॉइंट्स आपने नोट की है उसको, जो नोट्स किया लिया है ना उसको थोड़ा फिर से पढ़ो। तो वो जो बुद्धि में सारे दिन का जो बहुत कुछ इम्प्रेशन टेंशन वरी फियर चिंता वो वाइप ऑफ हो जाएगी, तो फिर फ्रेश बुद्धि से बाबा की याद में सोएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कि एक बच्चा बाबा की माँ की गोद में सोया है, ब्रह्मांड में अंडे मिसल वो जैसे मुर्गी माँ सेक रही है अंडे को। फिर सतयुग सुबह उठे जागृत हो गए, या एवरी डे ये गुड मॉर्निंग करते ये कॉन्शियस रखो मैं शरीर से न्यारी हुई, माना सोना और मरना बराबर कहा जाता है, सोया सो मोया सो गए शरीर का भान नहीं रहता, है तो शरीर में ही पर शरीर का भान नहीं है। तो फिर सवेरे दूसरे दिन अपने आप को अवतार समझो, शांति का अवतार, वो गुड मॉर्निंग किया शांति का पावर लेकर के आज सारा दिन कर्म करूँगा। तो क्या होगा कि वो वर्चू वैल्यू जो आपने ली वो पावरफुल होगी, तो आप और जो वातावरण का इफेक्ट है वो कम होगा। धीरे धीरे ये शक्ति बढ़ती चली जाएगी और खुशी बढ़ती चली जाएगी। पढ़ा हुआ भी रिपीट करने से, रिवाइज करने से अंदर कर्म में आ जाएगा ना फिर। तो इसीलिए सुना बहुत, समझा। अभी आप लेबोरेटरी में जा रहे हैं, समझा, प्रैक्टिकल उसको, ज्ञान को सुना। आप विज्ञान बनाने जा रहे हैं, एजुकेशनिस्ट आए थे, अब साइंटिस्ट बन के जाए, ठीक है। ओम शांति। फिर साइंटिस्ट बन के आना हमारे पास, एक्सपेरिमेंट शेयर करने के लिए, इन्वेंशन शेयर करने के लिए। हाँ, मैं जानती हूँ कुछ क्वेश्चंस अभी भी दिमाग में होंगे। उस दिन टाइम थोड़ा था, मैंने 15 मिनट ज़्यादा टाइम ले लिया, आपको देर से सोए होंगे, परंतु क्वेश्चंस को हल करने के लिए जहाँ जहाँ आप हैं, आपके सेवा केंद्र नज़दीक हैं या थोड़ा दूर भी हैं, तो टाइम फिक्स करके, मतलब दोबारा कोर्स करेंगे तो फिर रिवाइज हो जाने से क्लैरिटी आएगी और गाइडेंस भी ठीक मिलेगी, तो फिर सेंटर पर कनेक्शन रखेंगे तो अच्छा होगा। ओके, ओम शांति।
कमेंट्री कराएंगे हैं, कमेंट्री।
तो 5-7 मिनट मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति। ओ, मैं आत्मा इस देह से न्यारी, प्रकृति के बीच में निवास करने वाली चैतन्य शक्ति आत्माओं, मुझ आत्मा का वास्तविक सच्चा धर्म शांति है, शुद्धि है, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा शांत स्वरूप हूं, मुझ आत्मा की तीनों ही शक्तियां जागृत है, मन संकल्प शक्ति मैं शुद्ध आत्मा, मेरा सोच संकल्प और श्वास समझ और मेरी स्थिति संस्कार शांति है। इस शांत मन, शुद्ध मन सरोवर की तरह है, इस शांत पवित्र सरोवर में शुद्ध संकल्पों की लहर शीतलता का उस आत्मा के अपने स्वरूप का प्रेम और आनंद का अनुभव करा रहा है। मेरे हर श्वास में संकल्प में शांति है, प्रेम समाया है, मैं प्रेम और शांति की लहरों में लहराने वाली प्रेम स्वरूप आत्मा, श्रेष्ठ सोच और समझ मेरी धारणा को पक्का कर रही है, मुझे इस बात की स्मृति है, स्वमान है, मैं भगवान की संतान हूं। शिव बाबा का बच्चा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, शुद्ध शांत।